लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, महामारी कोविड-19 से पूरे विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था चरमरासी गई है। आज लोगों की जिंदगियां बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षा के स्तंभ को मजबूती से खड़ा करना असल चुनौती है। महामारी कोविड-19 का फैलाव का ऊंचा स्तर और उसकी गंभीरता विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से महसूस की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने इस महामारी के खिलाफ तैयारी और जवाबी कार्रवाई का मूल्यांकन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल बनाने की घोषणा की। साथ ही यूएन एजेंसी वैज्ञानिक विवरण तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही जारी करके कोरोना वायरस के प्रसार के प्रभावित स्रोतों पर नई जानकारी साझा की जा सकेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस अंतर्राष्ट्रीय पैनल की अध्यक्षता साझा रूप से न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री और यूएन विकास कार्यक्रम की पूर्व प्रमुख हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिन जॉनसन सर्लीफ करेंगी। इस वर्ष मई महीने में 73वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली के दौरान सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कोविड-19 के अनुभवों और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से लिए गए सबक की स्वतंत्र और व्यापक समीक्षा कराए जाने का आह्वान किया गया था। यूएन एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसिस।
इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड द वायरस इज नॉट अंडर कंट्रोल, इट्स गेटिंग वर्स।
अधिकांश दुनिया में वायरस काबू में नहीं है, हालात और बदतर हो रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों में कुल संक्रमणों की संख्या 2 गुनी हो गई है। महानिदेशक गेब्रेयेसिस के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक महामारी के फैलाव के तरीकों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल्द ही एक अपडेट जारी किया जाएगा, जिसमें हवा के जरिए वायरस के संभावित फैलाव के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। हाल ही में 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक खुले पत्र में यूएन स्वास्थ्य एजेंसी से कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलाव पर अपनी सिफारिशों में जरूरी बदलाव करने का आग्रह किया था। यूएन एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव के संभावित स्रोतों का निरंतर अध्ययन किया जा रहा है और इनमें हवा के जरिए, एरोसोल ड्रॉप्स, मां से बच्चे को और पशुओं से मनुष्य को संक्रमण के जोखिम की शिनाख्त की जा रही है।
प्लास्टिक का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन का आम हिस्सा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के इरादे से दुनिया के अनेक देशों में युवाओं को इसके खतरों के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्लीन सीज कैंपेन के तहत संचालित टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज नामक वैश्विक पहल अफ्रीका और एशिया के 23 देशों में शुरू की। जून 2019 से अब तक 1,70,000 से ज्यादा युवा इस मुहिम में हिस्सा ले चुके हैं। इस पहल के तहत युवा प्रतिभागियों ने ज्ञान और स्वचिंतन के स्तर पर स्कूलों में प्रशासन व व्यवसायों के साथ संवाद स्थापित किया और उन्हें एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की खपत को घटाने के लिए प्रोत्साहित किया। कोविड-19 के कारण जमीनी स्तर पर योजना के अनुरूप काम कर पाना संभव नहीं था, लेकिन बदलाव के युवा वाहकों ने इस चुनौती को पूरा करने के लिए वर्चुअल माध्यम का सहारा लिया। 30 जून 2020 को इस मुहिम में शामिल 1,900 युवाओं ने भारत में एक वर्चुअल युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसके आयोजन का उद्देश्य प्लास्टिक चैलेंज की सफलताओं की जानकारी साझा करना था। युवा सम्मेलन में अभिनेत्री दिया मिर्जा, ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और कार्टूनिस्ट रोहन चक्रवर्ती सहित कई हस्तियों ने शिरकत की और केन्या, युगांडा व घाना से भी प्रतिभागी शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक और उसके दुष्प्रभावों से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की एक पहल प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के इरादे से दुनिया के अनेक देशों में युवाओं को इसके खतरों के प्रति जागरूक बनाने पर केंद्रित है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों, समुदायों और व्यवसायों को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर निर्भरता घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हर दिन देश में 26,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें 10,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक को बटोरा नहीं जाता। यूएन पर्यावरण एजेंसी के क्लीन सीज कैंपेन के तहत संचालित टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज नामक इस वैश्विक पहल के जरिए बहाव को मोड़ने वाले युवाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित किया जाता है, साथ ही उन्हें प्लास्टिक के इस्तेमाल के प्रति अपने रवैयों में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हीं बदलावों को अपने निजी जीवन में अपनाने के बाद वे फिर उनका दायरा बढ़ाकर समुदायों में भी फैला सकते हैं। 30 जून को इस मुहिम में शामिल 1,900 युवाओं ने भारत में एक वर्चुअल युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसके आयोजन का उद्देश्य प्लास्टिक चैलेंज की सफलताओं की जानकारी साझा करना था।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने तुर्की के उस फैसले पर गहरा खेद जताया है, जिसमें किसी विचार विमर्श के बिना ही प्राचीन आया सोफिया धरोहर को मस्जिद में बदलने की बात की गई है। विदित हो कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगान ने शुक्रवार को एक फरमान जारी किया, जिसमें ऐतिहासिक हाया सोफिया को मुस्लिम प्रार्थनाओं के लिए 24 जुलाई तक खोलने का आदेश दिया गया। इससे पहले यूएन एजेंसी ने तुर्की से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और आया सोफिया का दर्जा विश्व धरोहर सूची में एक संग्रहालय के तौर पर बनाए रखने की अपील की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस बेहतरीन इमारत को करीब 1,500 साल पहले एक बड़े गिरजाघर के रूप में स्थापित किया गया और विश्व में इसे बाइजेंटाइन ईसाई वास्तुशिल्प के अप्रतिम उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। ओटोमन साम्राज्य के उभार के बाद इसे बाद में एक मस्जिद बना दिया गया, लेकिन फिर वर्ष 1934 में इमारत को एक धर्मनिरपेक्ष संग्रहालय का दर्जा दिया गया। न्यूज रिपोर्टों के मुताबिक इस फैसले के बाद इमारत का नियंत्रण देश के धार्मिक निदेशालय को सौंप दिया जाएगा और इसे मस्जिद के तौर पर खोला जाएगा, जहां नमाज भी अदा की जा सकेगी। यूनेस्को ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी तरह की तब्दीली के लिए संबंधित देश से सूचना मिलना जरूरी है और आवश्यक होने पर विश्व धरोहर समिति पड़ताल भी कर सकती है। यूनेस्को ने तुर्की प्रशासन से बिना देरी के संवाद शुरू करने की अपील की है, ताकि इस असाधारण विरासत के सार्वभौमिक मूल्य पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव की तत्काल रोकथाम की जा सके।
श्रोताओ, महामारी कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या पूरे विश्व में शुक्रवार 17 जुलाई तक 1,39,53,340 रिकॉर्ड की गई और 5,92,778 लोगों की मौत हुई। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 10,05,883 मामलों की पुष्टि हुई है और 25,630 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस महामारी से आप अपने आप को बचाते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आज की चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। विश्वव्यापी कैथलिक उदारता संगठन कारितास इंटरनेशनलिस ने कोविड महामारी से जूझते विश्व में वैश्विक युद्ध विराम और निर्धन देशों के लिए ऋण मुक्त संबंधी संत पापा फ्रांसिस की अपील पर ध्यान देने का आग्रह किया है। महामारी से उपजी आर्थिक आपदा पर चर्चा हेतु इस सप्ताहांत G20 देशों के वित्त मंत्रियों के शिखर सम्मेलन को दृष्टिगत रखते हुए कारितास ने निर्धन देशों के ऋणों को माफ किए जाने की मांग की है। महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर ऋण को रद्द करने अथवा उसे कम करने से संबंधित संत पापा फ्रांसिस के आह्वान को प्रतिध्वनित करते हुए कारितास संगठन के महासचिव अलोइशिस जॉन ने कहा कि संगठन ने 20 वित्त मंत्रियों के समूह को ठोस कार्रवाई करने तथा लाखों लोगों को तबाही से बचाने का स्पष्ट अनुरोध किया है। स्वास्थ्य और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विश्व के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों की पृष्ठभूमि में प्रकाशित कारितास की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तावना करते हुए महासचिव ने उक्त अपील की। पत्रकार सम्मेलन में कारितास संगठन के अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनियो तागले ने मध्य पूर्व के देशों पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि इनका सर्वाधिक दुष्प्रभाव निर्धन और कमजोर लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित और शरणार्थी बन गए हैं, जिनकी स्थिति महामारी से और अधिक बिगड़ गई है। कार्डिनल तागले ने विश्वव्यापी स्तर पर निर्धनों और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति एकात्मता का आह्वान किया। कारितास की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अब तक कैथलिक कलीसिया का उदारता संगठन कारितास इंटरनेशनलिस 1,20,00,000 यूरो बांग्लादेश, म्यांमार, वेनेजुएला, केंद्रीय अफ्रीकी गणतंत्र, लेबनान और सीरिया के लगभग 1,60,00,000 जरूरतमंदों के लिए खर्च कर चुका है। जिनीवा स्थित यूरोपीय कैथलिक और क्रिस्तीय कलीसियाओं के सम्मेलन केक के धार्मिक नेताओं ने तुर्की के इस्तांबुल शहर स्थित संत सोफिया महागिरजाघर को मस्जिद में परिणित करने के निर्णय पर गहन चिंता व्यक्त की है। यूरोपीय क्रिस्तीय कलीसियाओं के सम्मेलन केक के अंतर्गत यूरोप के 114 कलीसियाई समुदाय आते हैं। यूरोपीय आयोग और शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेंसी यूनेस्को को एक पत्र लिखकर यूरोपीय ख्रिस्तीय कलीसियाओं के सम्मेलन केक के धार्मिक नेताओं ने स्मरण दिलाया कि सन 1934 से इस्तांबुल स्थित हागिया सोफिया महागिरजाघर विश्व की धरोहर तथा संपूर्ण विश्व का कलात्मक संग्रहालय रहा है। महागिरजाघर की इस विशिष्ट स्थिति को तुर्की की सरकार के निर्णय ने रद्द कर दिया है। संत सोफिया महागिरजाघर का निर्माण 1,500 साल पहले एक ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तीय महागिरजाघर के रूप में हुआ था, जिसे 1453 में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की विजय के बाद एक मस्जिद में तथा बाद में मुस्तफा केमाल अतातुर्क द्वारा एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। ख्रिस्तीय नेताओं ने उक्त पत्र में गहन चिंता जाहिर कर सचेत किया है कि संत सोफिया महागिरजाघर को मस्जिद में परिणित करने से धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा की संभावनाओं को प्रश्रय मिल सकता है। उन्होंने यूनेस्को से मांग की कि संगठन तुर्की सरकार के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व विरासत स्थल हागिया सोफिया की वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जाए। रोम के कैथलिक कल्याणकारी समुदाय संत इजिदियो ने लॉकडाउन के बाद पहली बार गुरुवार को शरणार्थियों का पुनः स्वागत किया। ये शरणार्थी ग्रीस के लेस्बोस द्वीप में फंसे थे, जिन्हें एक मानवतावादी पहल के तहत रोम लाया गया है। अफगानिस्तान के 10 शरणार्थी ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर मोरिया शरणार्थी शिविर में इटली पहुंचने की प्रतीक्षा में थे। मोरिया शिविर मूल रूप से 3,000 शरणार्थियों को रखने के इरादे से निर्मित किया गया था, जिसमें अब 19,000 से अधिक लोग शरण ले रहे हैं। कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए 4 माह पूर्व इटली ने अपनी सीमाओं को बंद कर लिया था। रोम पहुंचने पर महिला शरणार्थी रजिया गुलामी ने 16 जुलाई को पत्रकारों से कहा, मोरिया यूरोप के नर्क के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, मोरिया में रहने वाली शरणार्थी एक कठिन भयावह स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, जहां मौलिक अधिकारों का दमन होता है तथा शरणार्थियों के पास लौटने या आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं होता है। परमाध्यक्षीय कल्याणकारी संगठनों के कार्यालय तथा इटाली और ग्रीक अधिकारियों के सहयोग से संत पापा फ्रांसिस ने ग्रीस में फंसे शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु एक मानवीय गलियारे के माध्यम से युवा लोगों और परिवारों को इटली में शरण लेने में मदद की वकालत की थी। गुरुवार को मोरिया शरणार्थी शिविर से लाए गए 10 अफगानी शरणार्थी 67 आप्रवासियों के दल का अंतिम भाग हैं, जो 2016 से अब तक परम धर्म पीठ और कैथलिक कल्याणकारी समुदाय संत इजिदियो द्वारा इटली लाए गए हैं। संत इजिदियो समुदाय के अनुसार अब तक मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से मानवतावादी गलियारे के माध्यम से 3000 से अधिक शरणार्थियों को यूरोप लाया जा चुका है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद हुई अनुदान की कमी से जूझ रहे ईसाई समूह पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से प्रभावित असम राज्य तक पहुंचने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं, जहां लगभग 66 लोगों के प्राण चले गए हैं तथा लगभग 36 लाख लोग असहाय हो गए हैं। बोंगाई गांव धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष थॉमस पुलोपिलिल ने 16 जुलाई को कहा, हम एक भयावह स्थिति में हैं और यह नहीं जान पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि संपूर्ण राज्य बाढ़ से प्रभावित हो गया है और लोग भोजन और आवास की तलाश में भटक रहे हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में भी भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है, जो पहले से ही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के परिणामों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उका समाचार से धर्माध्यक्ष पुलोपिलिल ने कहा, मूसलाधार बारिश और बाढ़ तो प्रतिवर्ष सामान्य घटना है, हालांकि इस वर्ष इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, सरकारी एजेंसियां जो कुछ कर सक रही हैं वे कर रही हैं, किंतु वह बहुत कम है। स्थिति की व्यापकता को संबोधित करने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। धर्माध्यक्ष ने कहा, कैथलिक सहित समस्त कलीसियाई समुदाय विभिन्न राहत एजेंसियों के साथ मिलकर संसाधनों का उपयोग किया करते थे और इस तरह की स्थितियों में लोगों की मदद किया करते थे। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश अब हम पीड़ितों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए आप्रवासी कामगारों और अन्य गरीबों को खिलाने के लिए हमारे अनुदानों को खर्च किया जा चुका है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।